सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी। पिछले दो अंकों से कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं कैंसर की, एक ऐसे रोग की जिसके रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी दहशत, जिसका खौफ हर मन में होता है। अगर आपने हमारे पिछले दोनों कार्यक्रम सुने हैं तो कुछ दहशत तो जरूर कम हुई होगी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत कैंसर की जंग जीत चुकी श्रीमती आराधना त्रिपाठी के एक संस्मरण के साथ। हम ये संस्मरण आपको सुनवाएं, उससे पहले कबूल कीजिए संज्ञा के साथ अनीश का नमस्कार।
एक बार ऐसा हुआ कि तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि ऐसा लग रहा था अब मैं नहीं झेल पाऊंगी। डॉक्टर आ भी रहे थे, डॉक्टर बोल भी रहे थे, अचानक से आप कैसे एकदम डाउन हो गई हो, ऐसे में तो आप फिर ट्रीटमेंट ही नहीं ले पाओगे अच्छे से। सभी घर वाले जितने सब कोई हिम्मत दे रहे थे, पर मेरे को किसी की बातें नहीं अच्छी लग रही थी। तो मैं बहुत दुखी थी, वॉक कर रही थी वहीं हॉस्पिटल में, डॉक्टर सेठ हैं उनके पास मैं गई, जो शुरू में भी मेरा उन्होंने ही डायग्नोस किया था। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, रोने लगी उनसे मिलके। तो वो भी ड्यूटी में थी, तुरंत बाहर आई, बोली अरे क्या हो गया, आप यूनिफॉर्म में हैं हॉस्पिटल की और बाहर कैसे आप आ गए। तो मैं बताई, मैं बोली आज मेरे को बहुत ज्यादा निराश हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब मेरे को हिम्मत दे रहे हैं, मेरे को ये भी मालूम है कि वो मेरे सब अपने हैं, मेरा अच्छा चाहते हैं, लेकिन आज पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है अब मैं दर्द नहीं झेल पाऊंगी। तब उन्होंने मुझे जो बातें कही, बातें तो बहुत समझाई उन्होंने, लेकिन उनकी दो बात मेरे को इतनी अच्छी लगी। पहली बात उन्होंने कही कि कोई भी दर्द जो है वो 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं रहता, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड का होगा। और ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि दर्द से किसी भी आदमी की मौत नहीं होती, दर्द ही होगा आपको और कुछ नहीं होगा, आप खत्म भी नहीं होगे और वो बस कुछ पीरियड का है, उतना समय आप पार कर लो फिर सब ठीक है। ये बातें मेरे दिमाग में इस तरह बैठ गई कि मैं गई और जब भी कोई प्रोसीजर करने मैडम आती थी तो बस मुझे यही दिमाग में रहता था कि ये बस 5 सेकंड या 6 सेकंड बस इतना ही सहना है, और ये तो तय है कि सहना मुझे है, लोग सब मेरे साथ रहेंगे, मुझे सहारा देंगे, सपोर्ट करेंगे, मानसिक सब देंगे, लेकिन शारीरिक दर्द तो सिर्फ मुझे झेलना है। और जैसी ये बातें मेरे दिमाग में आई तो सारे दर्द खत्म हो गए, और पता नहीं कहां से मुझे ये हिम्मत आ गई कि नहीं इतना तो मैं सह लूंगी, कम से कम 10 सेकंड का दर्द तो मैं झेल सकती हूँ। ये पॉजिटिव सोच आते ही सारी चीजें सही होने लगी।
पॉजिटिव सोच रखना किसी भी रोगी के लिए बहुत जरूरी है, और ये सोच बनी रहे इसके लिए घर में माहौल बनाए रखने के लिए हर सदस्य का फर्ज है कि रोगी के सामने कोई भी नेगेटिव ऊर्जा वाली बात ना करें, उनको हर समय खुश रखने की कोशिश करें। अनियमित दिनचर्या, प्रदूषण, जनसंख्या बहुत से कारण हैं कि हमें कैंसर के कुछ ज्यादा ही केसेस सुनाई पड़ने लगे हैं, दिखाई देने लगे हैं। पर ये भी तो हो सकता है शायद पहले बहुत से केसेस डायग्नोस ही ना हो पाते हों, इसलिए हमें संख्या का पता नहीं चलता। पर जो भी हो, भारत में कैंसर रोगियों का प्रतिशत बढ़ा तो है।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की जानकारी के अनुसार देश में वर्ष 2011 में कैंसर रोगियों की संख्या अनुमानित 28,19,457 थी, जो वर्ष 2012 में बढ़कर 28,20,179 और वर्ष 2013 में 29,34,314 हो गए।
हम तो कैंसर कैपिटल में रह रहे हैं, मैं पूरी दुनिया के कैपिटल बोल रहा हूँ इंडिया को, हम तो हर अंग के कैपिटल में हैं, हम हेड नेक कैपिटल में हैं, हम ब्रेस्ट के भी कैपिटल में हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम तो हर किसी चीज के कैपिटल में हैं। आप कहीं का भी कैंसर ले लें, अब वैसे आप पंजाब में जाओगे ना तो वहाँ कोई और कैंसर होंगे, आप छत्तीसगढ़ में आओगे वहाँ कोई और कैंसर होंगे, आप साउथ में जाओगे वहाँ कोई और कैंसर होंगे, कैंसर सब जगह है। रीजन वाइज ले सकते हो आप, लेकिन कैंसर सब जगह है।
ये थे एंडोस्कोपी और कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर राहलकर, जो आज भी कैंसर के बारे में जानकारियां देने के लिए हमारे साथ हैं। भारत में कैंसर रोगियों के कुछ और आंकड़े बता रही हैं सिम्स बिलासपुर की रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विभा ध्रुव।
अभी भारतवर्ष में जो कैंसर है वो एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। प्रतिवर्ष भारत में जो आंकड़े अभी उपलब्ध हैं उसके हिसाब से 1 मिलियन प्रतिवर्ष कैंसर के रोगी अभी अनुमानित उनकी संख्या है, जिनमें से 6 से 7 लाख प्रतिवर्ष कैंसर के कारण जिनकी मृत्यु हो जाती है। इन सभी जो कैंसर मृत्यु उसमें जो 40% है उसका जो मुख्य कारण है वो टबेको है।
जैसे टीबी के लिए या चेचक के लिए या पीलिया के लिए कुछ ड्रॉप्स होती है, वैक्सीन होती है, एंटी वैक्सीन होती है, ऐसी कैंसर के लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है क्या?
हाँ, कुछ बीमारियां हैं जिनके इन्फेक्शन के जो कार्सिनोजेनिक इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन को शुरुआत में ही रोक दिया जाए, उनसे बचाव किया जाए, तो वो कैंसर होने से हम बहुत बड़ी हद तक बचाव कर सकते हैं अपना। जिसमें से हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जो सर्विक्स बच्चेदानी का जो कैंसर के लिए जिसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो वो वैक्सीन अगर हम लगा लें और इन इन्फेक्शन से हम बचाव अपना कर लें, तो बच्चेदानी के कैंसर और लीवर के कैंसर के आंकड़ों में बहुत ज्यादा कमी लाई जा सकती
है। मतलब सिर्फ इन दो कैंसर के लिए वैक्सीन है, बाकी जनरल कैंसर के लिए कहीं के भी सेल्स एक्स्ट्रा ग्रोथ करने न लगे, कैंसर सेल्स के रूप में डेवलप ना हो, इस तरह की कोई एंटी वैक्सीन नहीं है?
एक्चुअली में ये कैंसर की वैक्सीन नहीं होती है, ये उन वायरसेस की वैक्सीन है जो इन्फेक्शन बाद में कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। तो अगर हम इन इन्फेक्शन को रोकें तो बहुत बड़े स्तर पे हम कैंसर में जो कार्सिनोजेनिक जो वायरस है उसको रोक सकते हैं।
अच्छा, कैंसर अनुवांशिक रूप से कितना पेरेंट्स से बच्चों में आ पाता है?
कुछ कैंसर है जिनको हम मानते हैं कि अनुवांशिक प्रॉपर्टी रहती है, वो है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद कोलोन कैंसर, बच्चों में जो है आंखों का कैंसर होता है, रेटिनोब्लास्टोमा का कैंसर और लिम्फ ट्यूमर।
अपोलो बिलासपुर में 8 साल से ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर रोग का इलाज कर रही डॉक्टर सुश्री परिडा से जब हमने पूछा कि 8 साल पहले और आज की स्थिति में रोगियों की संख्या में क्या फर्क आया है, तो वे बोली,
सर तो बढ़ा है, क्योंकि ना मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, जो डाटा बोलता है इसमें तो कैंसर का इंसिडेंट बढ़ा है और कोशिश है कैंसर का इंसिडेंट को कम करने के लिए। हो सकता है वो पहले डिटेक्ट नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है, लोग का लाइफ स्पैन बढ़ा है और इन्फेक्टिव डिजीज कंट्रोल है, इसीलिए कैंसर अभी सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है फॉलोइंग कार्डियक डिजीज। मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज पहला कॉज है डेथ का और फर्स्ट है और सेकंड कैंसर है।
और आपने कहा कि कोशिश की जा रही है कि इसके इंसिडेंट्स कम हो, तो उसके लिए क्या,
जैसे मॉडिफाइंग जो फैक्टर है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर उनको कम किया जाए तो कैंसर कम होगा।
आपके पास जो केसेस आते हैं उसमें मैक्सिमम किस उम्र के लोग रहते हैं, महिलाएं ज्यादा रहती हैं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे?
सब लोगों, जैसे मैं बोलूँ ना, सब लोग को कैंसर हो सकता है, इवन न्यू बॉर्न बेबी से बुजुर्ग लोग तक, और कोई भी एज ग्रुप में ट्रीटमेंट हो सकता है। हम लोग जनरल कंडीशन और टाइप ऑफ ट्यूमर और स्टेज का हिसाब से डिसाइड करते हैं। सो ये गलत फहमी में नहीं रहना है, वो बूढ़ा हो गया कि बुजुर्ग हो गया हम लोग इलाज नहीं कर सकते, वो बच्चों है सह नहीं पाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। और जैसे उम्र बढ़ता जाता है कैंसर का इंसिडेंट बढ़ता जाता है।
बिलासपुर के सरकारी अस्पताल सिम्स की स्थिति कुछ ऐसी है।
पेशेंट की संख्या पिछले सालों से तो बढ़ी हुई है, जिसमें मुख और गले का कैंसर साल दो साल से अभी संख्या हमारे पास काफी बढ़ गई है, जिसमें 200 पर ईयर के हिसाब से हमारे पास पेशेंट रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जिन्हें हम अपने हॉस्पिटल में भर्ती की सुविधा के साथ साथ कीमोथेरेपी की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पुरुषों में 5 जगहों के कैंसर सबसे आम है, इनमें फेफड़ा, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टम, पेट और लीवर शामिल है। वहीं महिलाओं में स्तन, कोलोरेक्टम, फेफड़ा, गर्भाशय और पेट में सबसे ज्यादा होते हैं।
महिलाओं में अपन जो सुनते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन कैंसर, वही कैंसर सबसे ज्यादा है, उसकी वजह से अपने को सुनने को मिलता है।
अपने इधर बिलासपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में कौन सा कैंसर ज्यादा देखने में आ रहा है?
इधर तो फीमेल में सर्विक्स फॉलोड बाय ब्रेस्ट और ओरल कैविटी का कैंसर भी बहुत ज्यादा है। हम लोग का हिसाब से बिकॉज टोबैको यूज बहुत ज्यादा रहता है इस एरिया में, इसीलिए
सबसे बड़ा जो है वो है पाउच, जो आज की तारीख में जो मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान में, अगर कोई चीज बंद होना चाहिए तो वो पाउच है। पाउच इज डेडली। शराब तो आपको 50-60-70 की उम्र में मारती है ना, पाउच वाले जो होते हैं बच्चे होते हैं 24-25 साल की उम्र में मरते हैं, मतलब कुछ करने के पहले वो मर जाते हैं, या हो सकता है शादी करें और शादी के 6 महीने बाद उनको, मैंने बहुत देखे हैं ऐसे, उनकी बहुत बुरी हालत होती है।
और अब जानकारी सर्विक्स कैंसर की।
का तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स रहता है, जैसे अर्ली एज ऑफ मैरिज, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, इन्फेक्शन, अनहाइजीनिक कंडीशन। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज वन ऑफ द फैक्टर जिसका इन्फेक्शन की वजह से सर्विक्स कैंसर ज्यादा होता है, इसीलिए उसका वैक्सीन देना जरूरी रहता है।
गर्भाशय के कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण पेपिलोमा वायरस होता है और वो ज्यादा लोगों से संपर्क बनाने से फैलता है। जैसे नंस होती है ना, जिन्होंने कभी किसी के साथ संपर्क नहीं रखा है, इस किस्म के लोगों में ऑलमोस्ट अननोन है।
सर्विक्स कैंसर को रोकने के लिए ये अपील की जा सकती है कि 10 साल से ऊपर की हर लड़की को शादी के पहले सर्विक्स कैंसर का वैक्सीन लगवाना जरूरी है।
3 लगते हैं, 0, 1 और 6। दूसरा बात है पाप स्मियर, ये है स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग अर्ली स्टेज डायग्नोसिस के लिए 10 ईयर्स में, और बिफोर मैरिज देना, बिफोर स्टार्टिंग लाइफ देना जरूरी रहता है।
स्त्री रोग संबंधित कैंसर के जो लक्षण है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। योनि मार्ग में सफेद पानी आना, असमान रक्तस्राव एवं पेशाब में जलन, पेट के निचले हिस्से में दर्द व कमर में दर्द, पेट का असमान रूप से बढ़ना या किसी गांठ का महसूस होना, मासिक धर्म बंद हो जाने के पश्चात भी रक्त स्राव का आना, ये कुछ लक्षण होते हैं जिसके प्रति महिला जागरूक होना चाहिए। उसके अलावा स्तन का कैंसर, जिसमें स्तन में गांठ का पाया जाना या निप्पल से गाढ़ा द्रव निकलना या किसी स्तन के किसी भी भाग में असमान परिवर्तन, अगर महिलाओं को लगता है तो वो अपने चिकित्सक से इसका परामर्श ले सकते हैं।
हमने सुना था कि नाभि से पानी निकलना भी एक कैंसर का लक्षण होता है, क्या ये सही है?
वो ऐसा कुछ कैंसर का सिम्टम नहीं रहता है कि ये कैंसर का सिम्टम है नाभि से पानी निकलना, उसके लिए विभिन्न तरह की आप स्क्रीनिंग या बहुत तरह की जांच करके ही बता सकते हो कि क्या कारण है, लेकिन नाभि से अगर पानी निकल रहा है तो वो कैंसर ही होगा ऐसे नहीं कहा जा सकता। रक्त कैंसर के भी केसेस बहुत हैं, जिसमें आपको लंबी अवधि का बुखार हो सकता है, बार बार सर्दी जुकाम होना, कमजोरी लगना, शरीर के कुछ हिस्सों में गिठान का महसूस होना या आपकी तिल्ली का या यकृत का बढ़ जाना, इस तरह के लक्षण के साथ मरीज हमारे पास आते हैं। कई रक्त कैंसर का जो क्यूरेटिव अगर ट्रीटमेंट बोले उसको पूरी तरह से ठीक होने के लिए, तो हम बोन मैरो उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके अलावा उसको कीमोथेरेपी द्वारा भी उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है।
एडल्ट को तो जरूर होते हैं, बच्चों लोग को वन ऑफ द मेजर कैंसर है। ब्लड कैंसर में नॉर्मली ये होता है खून में ही बनता है, खून का जगह में कैंसर सेल बनता है, इसीलिए हम लोग का जो 3 सेल लाइन है ब्लड का वो अफेक्टेड होता है। जैसे WBC कम होने से इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है तो बच्चों लोग को फीवर रहता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी होता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी कहाँ से खून बह सकता है, नहीं तो थक्का वगैरह जम सकता है, हीमोग्लोबिन कम होने से एनीमिया होता है। नॉर्मली बच्चे लोग इल रहते हैं, लाइक बुखार आता है कि कहाँ ब्लीडिंग होता है, जैसे ब्लड टेस्ट होता है तो पता चल जाता है जो कैंसर।
रीढ़ की हड्डी में बोन मैरो होता है जिससे शरीर के ब्लड सेल्स बनते हैं। ब्लड कैंसर होने पर शरीर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन एक चीज और होती है, स्टेम सेल।
स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कितना सारा कैंसर पेशेंट में होता है। बेसिकली स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का ये रोल रहता है, हम लोग जब हाई डोज थेरेपी देते हैं तब, मैं जैसे बोली हूँ रैपिडली ग्रोइंग सेल का ऊपर काम करता है, तो हम लोग का बोन मैरो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग स्टेम सेल देते हैं।
क्या स्टेम सेल क्या होता है?
स्टेम सेल जैसे होता है, नॉर्मली हम लोग का शरीर में एवरीडे ब्लड बनता है, हम लोग जैसे कोई भी ड्रग्स देते हैं केमोथेरेपी वाला ड्रग्स जो हम लोग का ब्लड सेल को मदर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, सो दैट हमारा हो भी सकता है रिकवरी नहीं होगा, सो इन्फेक्शन ब्लीडिंग टेंडेंसी वगैरह होगा और लोग बच नहीं पाएगा बिना ब्लड में, तो उनको रिप्लेस करने के लिए हम लोग आइदर खुद का मदर सेल से बोन मैरो में उनको निकाल के रखते हैं, नहीं तो मैचिंग लोग का देते हैं बोन मैरो। बेसिकली इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ बोन मैरो, बट आज का डेट में बोन मैरो के लिए हम लोग को रीढ़ का हड्डी से हमेशा लेना नहीं पड़ता है, देयर आर ड्रग्स अवेलेबल जो मदर सेल को स्टिमुलेट करके ब्लड में ले आते हैं, हम लोग उनको ट्रांसफ्यूजन जैसे मशीन से हम लोग सेपरेट करके रख लेते हैं, दोबारा दे देते हैं वापस।
ब्रेस्ट कैंसर की संख्या भी अपने क्षेत्र में, पूरे देश में, दुनिया में, सब तरफ ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके क्या कारण है?
डेवलप कंट्री में ब्रेस्ट कैंसर पहला कॉज है, सर्वाइकल कैंसर उनका बहुत ज्यादा कम है। हम लोग का कंट्रीज में, इवन मेट्रो सिटीज में भी ब्रेस्ट, कोई कोई जगह में जैसे मुंबई वगैरह में ब्रेस्ट कैंसर पहला कॉज है सर्वाइकल कैंसर। आजकल का डेट में लेट एज ऑफ मैरिज, कम बच्चा, फीडिंग नहीं कराते है, तो लेट एज में बच्चा होना, ये सब कॉजेस रहता है, और 10% में फैमिली हिस्ट्री रहता है ओनली, और मोस्ट ऑफ द टाइम में 80% ऑफ टाइम में कोई कॉज नहीं रहता है। जैसे यंग ब्रेस्ट में 20 इयर्स 25 इयर्स में भी आजकल डिटेक्ट,
वो हेरिडिटी में भी हो सकती है,
हेरिडिटी हो सकती है, बट ब्रेस्ट में दो जीन्स है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है, ब्रेस्ट ओवरी कोलन में जीन्स भी पता है, BRCA1 BRCA2।
लीवर कैंसर,
लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस, उनमें क्या डिफरेंस है?
सिरोसिस तो जहाँ लीवर का फंक्शन कम कर देता है और डिस्ट्रक्शन ऑफ द लीवर सेल्स रहता है, बट कैंसर से अलग बीमारी है। कैंसर में तो एक दूसरा ट्यूमर बढ़ रहा है लीवर के अंदर, जो हो सकता है लीवर का फंक्शन को डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरा बात है सिरोसिस लॉन्ग रन में कैंसर कन्वर्ट हो सकता है।
सिरोसिस का कारण ज्यादातर अल्कोहल होता है क्या?
अल्कोहल एक कॉज, मतलब ज्यादा अल्कोहल लेने में इट कैन लीड टू सिरोसिस ऑफ लीवर, जो लॉन्ग रन में हम लोग उनका सही टाइम में उनको हम लोग नहीं रोकेंगे तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, बट एक बार एस्टेब्लिश सिरोसिस हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम लोग उनको कंट्रोल करके रखते हैं।
प्रोस्टेट कैंसर,
प्रोस्टेट कैंसर है वो पुरुषों की ग्रंथि जो रहती है उसका कैंसर है, और ये जनरली एजिंग वाला कैंसर है, जो बढ़ती उम्र के कारण जो कैंसर होता है उनमें होता है, तो इसके भी एल्डरली पेशेंट है वो अपना ही इस बारे में जांच कराएं, जिसकी अल्ट्रासोनोग्राफी जरा प्रोस्टेट बड़ा हुआ है तो उसकी जानकारी, या PSA एक होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, उसके द्वारा हम इस बीमारी का पता लगा सकते हैं।
आजकल का लोग ज्यादा दिन देते हैं, लाइफ स्पैन इंक्रीज हुआ है, इसीलिए एल्डरली पर्सन को नॉर्मली अर्ली स्टेज में पता चलता है तो नॉर्मली उनका यूरिनरी सिम्टम्स रहता है। दैट इज मेरे हिसाब से ऑल एल्डरली मेल को 60 प्लस में प्रोस्टेट इलाज होता है, सो यूरिनरी सिम्टम्स रहता है। पता चलता है तो सर्जरी होता है इनिशियली सर्जरी, बट उनका क्यूरेटिव नहीं होता है, ऑर्गन को निकालते हैं जितना हिस्सा निकल सकते हैं, और दूसरा ऑर्गन में जाता है, नॉर्मली बोन को जाता है तो बोन पेन होता है, तब हार्मोन में इनिशियली ट्रीटमेंट होता है और जरूरी होता है तो बाद में वो हार्मोन सेंसिटिव रहता है नॉर्मली ट्यूमर, सो इनिशियल स्टेज में हम लोग हार्मोन देते हैं और मेजोरिटी लोग को हार्मोन में कंट्रोल में रहता है। हार्मोन को जब सेंसिटिव नहीं रहता है, जब बढ़ता है इन स्पाइट ऑफ हार्मोन, तब केमो दिया जाता है।
आहार नलिका कैंसर,
जीआई सिस्टम का कैंसर, जैसे हम आप बोलो इसोफेगस से शुरू होके इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन और एनल कैनाल, कहाँ पे भी कैंसर हो सकता है, वो भी आज का डेट में वो भी एक मेजर कॉज है। बट कोलन वगैरह का कैंसर आज का डेट में क्योर हो जाते हैं, स्टोमक का कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ में आता है भी क्योर हो जाता है, बट सबके लिए डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन।
लेकिन जैसे स्टमक या इंटेस्टाइन का कैंसर हुआ है तो सर्जरी करके वो वाला पोर्शन निकालते हैं कि रेडिएशन से
ऑपरेबल रहता है तो सर्जरी होता है, बट ऑपरेशन करने का बाद भी केमो रेडिएशन का जरूरी हो सकता है।
आहार नाल के जो कैंसर है जिसमें इसोफेगस हुआ, स्टमक हुआ, कोलोन हुआ, ये डाइट से रिलेटेड रहते हैं और अपना खान पान तथा लाइफ स्टाइल से इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस तरह के कैंसर में। अगर अपना लाइफ स्टाइल और अपना खान पान है उसको अगर हम संतुलित रखें और उस पर हम ध्यान दें तो इस तरह के कैंसर पे बहुत हद तक बचाव किया जा सकता है।
किसी भी ऑर्गन में गांठ बन करके रहता है, वो धीरे धीरे करके पूरे और ऑर्गन्स में फैलना शुरू हो जाता है, जैसे लेटर स्टेज आती है तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है या शुरू से ही बहुत तेजी से सेल्स ग्रोथ करते हैं।
करता है नॉर्मली एक जगह में पहले गांठ बनता है, फिर वो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड को जाता है, फिर लिम्फ नोड को जाके वो जब ब्लड को जाता है तब जाके दूसरा ऑर्गन में जाके फिर बैठ जाता है, फिर मेटास्टेसिस होता है। कोई भी प्राइमरी जो ऑर्गन से हुआ दूसरा ऑर्गन में नॉर्मली ब्लड का माध्यम में जाता है, दूसरा ऑर्गन में जाके फिर गठन शुरू करते हैं, उनको मेटास्टेसिस बोलते हैं, दूसरा जगह को जाने में स्टेज 4 हो जाता है, बट पहला हिस्सा वो नॉर्मली लिम्फ नोड को जाता है।
तंबाकू, स्मोकिंग और अल्कोहल, ये तीन बहुत बड़े कारण हैं लीवर, लंग और ओरल कैविटी के कैंसर्स के लिए।
वर्ल्ड में देखा जाए तो लंग कैंसर सबसे पहला कॉज है कैंसर का, उसका कारण है स्मोकिंग।
अच्छा,
लीवर का स्मोकिंग नहीं है, लीवर का अल्कोहल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, लंग का लिए इट इज स्मोकिंग।
अच्छा,
लंग एंड ओरल कैविटी, मुंह का।
अल्कोहल के कारण लीवर का, पैनक्रियाज का और आंतों का कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है, पर अभी अगर हम इंसिडेंस वाइज देखें तो प्रमुख तौर पे उनको ओरल कैंसर होता है। मतलब विश्व में जो ओरल जो कैंसर है उसमें 80% जो कैंसर है वो भारत में मिलते हैं, और जिसका मुख्य कारण है तंबाकू उसके बेस में है। फेफड़ों का कैंसर है उसका जो प्रमुख कारण है वो स्मोकिंग हम मान सकते हैं। नॉन स्मोकरों को भी होता है पर जो स्मोकिंग करते हैं उनमें इस तरह का कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके जो लक्षण हैं, लंबी खांसी जो कि छाती में दर्द, श्वास फूलना और बलगम के साथ हो सकती है, साथ ही खांसी के साथ कभी कभी खून भी आ सकता है और आपको थकान ज्यादा रहती है, सांसें फूलती है।
किसी कैंसर के रोगी का जब तक इलाज चल रहा होता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन चल रहा होता है, तब तक उसे क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या परहेज करने चाहिए?
इसमें तक आपका इम्यूनिटी कम रहता है, इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा रहता है, इसीलिए इन्फेक्शन से बच के रहना है, हेल्दी डाइट खाना है, खाने में परहेज नहीं रहता है बट इन्फेक्शन से बचना है, इसी हिसाब से आपको परहेज रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको बाहर का चीज नहीं खाना है, कच्चा चीज नहीं खाना है।
पूरी तरह से ठीक होने के बाद एक कैंसर पेशेंट को क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं?
नॉर्मल आदमी की तरह, नॉर्मल आदमी को तो प्रिकॉशन रखना पड़ेगा ना, ऐसे जैसे स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, हेल्दी डाइट खाना है, एक्सरसाइज करना है और आपको यू हैव टू अवॉइड ऑल स्मोकिंग इन एनी फॉर्म।
कैंसर के खिलाफ एक जंग और शुरू हो गई है। एक युवा ने इंदौर से नेपाल तक साइकिलिंग कर 80 लाख रुपए एकत्रित कर भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर को देने का संकल्प लिया है। ये काम उस युवा ने अभी अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू किया है। वो आईपीएस एकेडमी में इंजीनियरिंग का छात्र है। उन्होंने देखा कि हजारों गरीब लोगों को पैसों के अभाव में सही इलाज नहीं मिल रहा है। कैंसर ग्रस्त कई मरीज जीवन से हार जाते हैं। ऐसे लोगों के इलाज के लिए वे इंदौर से नेपाल तक दुकान दुकान पहुंचकर सभी से 5-5 रुपए एकत्र कर रहे हैं।
इन्होंने तो कैंसर रोगियों की परेशानी देखकर उनके लिए कुछ करने की सोची और निकल पड़े एक अभियान पर हमारे साथ हैं श्रीमती आराधना त्रिपाठी, जिन्होंने कैंसर से लड़ाई किस हिम्मत से लड़ी और आज कैंसर की काउंसलर कैसे बनी, चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
मैं डायरी मेंटेन करती थी, मेरे दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता था, जो भी तनाव आया, मैं उसको लिख लेती थी कि जब डॉक्टर से मिलूंगी तो ये चीज उनसे पूछना है। जितनी क्वेरीज रहती थी, अगर मैं किसी पेशेंट से पूछती थी कि मुझे तो ऐसा ऐसा तकलीफ नहीं होती, आपको बॉडी पेन कैसे हुआ, वो बोले नहीं मुझे तो पैरों से दर्द शुरू हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास पूछती थी, डॉक्टर साहब मेरा तो पैरों में दर्द नहीं हुआ, उनके तो पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, वो चल नहीं पा रही। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको ये मेडिसिन हम दे रहे हैं, इसका कीमो आपको चल रहा है, उनको इस मेडिसिन का कीमो चल रहा है, तो इस मेडिसिन में पैरों में दर्द होता है और जो आपको दे रहे हैं उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, तो आपको वो प्रॉब्लम हो रही। मैं हाँ मुझे हो रहा है, तो बोले ये फर्क है दोनों में। तो मैं उनको भी फिर कन्वे की ये मैसेज को, बोले आप ये टेंशन मत लो कि मुझे क्यों नहीं हो रहा, और आपकी बीमारी के हिसाब से डॉक्टर साहब ने जो दवा आपको दी है उसमें आपको ये प्रॉब्लम होगा ही। तो वो बड़ा रिलैक्स हो गई, बोली अरे इसको हमको डॉक्टर नहीं बताया। मैं बोली डॉक्टर साहब किसको किसको बताएंगे। इस तरह की धीरे 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 कई जिज्ञासा, किसी का बीपी बहुत ज्यादा बहुत हाई हो जाता था कीमो मेडिसिन के समय, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। वो मेरे बगल में थी, एक आंटी थी, उनका बेटा बाहर चला जाता था, मैच चल रहा है, कुछ चल रहा है, वो देखने चला जाता था, कितनी देर बैठा रहेगा, वो तो 6-7 घंटे के कीमो चलते हैं। अब उनको अचानक पसीना आना शुरू हुआ, वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उनको क्या हो रहा है, तो मैं भी लेटी हुई देखती रही उनको बहुत देर पर। मेरे को भी लगा शायद कुछ वो एबनॉर्मल हो रही हैं, बार बार उठ रही हैं, बैठ रही हैं, लेट रही हैं। तो मैंने सिस्टर से बात की, तो उन्होंने बोला कि हाँ पता नहीं आंटी को अचानक क्या हो गया। मैं बोली आप एक बार बीपी भी मेजर करिए, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उनका बीपी हाई निकला। तो डॉक्टर आए तो फिर मेरा एक क्वेश्चन तैयार था, डॉक्टर साहब इनको ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ, और वो कह रही उनको हर बार होता है, तो वो क्यों होता है, तो बोले फिर वही क्यों क्वेश्चन आपका, समझो आप मेडिसिन। तो मैं बोली नहीं तो ये मेडिसिन का ही डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उनकी मेडिसिन भी यही है जो मेरे को लगी हुई है। तो वो देखे बोलते हैं कि अरे हाँ ये मेडिसिन तो ज्यादा, रिपोर्ट दिखाओ। फिर वो रिपोर्ट डिटेल देखे तो बोलते हैं इनको बीपी है, तुमको बीपी नहीं है। अब ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन पेशेंट लोग इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आपको तो नहीं हुआ, हमको तो बीपी बढ़ता है, हमारा जब कीमो लगता है हमारा बीपी बढ़ जाता है, तो आपको बीपी जब है ही नहीं तो कहाँ से बढ़ेगा, उनको बीपी है इसलिए उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें, मतलब इतनी एक एक पेशेंट के हिसाब से अलग अलग चीजें मुझे पता चली अपने ट्रीटमेंट के दौरान। फिर मैं जहां तक होता था कोशिश करती थी कि दूसरे पेशेंट को समझा सकूं कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसमें मत टेंशन लो, आप डॉक्टर से बात करो, आपको जो डाउट लगता है डॉक्टर से पूछो। तो डॉक्टर तक ये बात पहुंच गई कि त्रिपाठी मैडम कोई है जो डे केयर में आती हैं, उनसे बात किए तो हमको बहुत अच्छा लगा, और वो हम लोग को ये सब बताई कैसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है आप इसमें टेंशन मत लो। तो डॉक्टर का कहना था कि यहाँ पे काउंसलर नहीं है कोई, और हम लोग खुद जितना काउंसलिंग देते हैं उतनी देर में शायद हम 2 पेशेंट और देख लेंगे, तो यदि आप ये कर सकें तो हम लोग को मदद हो जाएगी उस समय। लेकिन मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मेरे पास ही पेशेंट भेजना शुरू किया। तो उसके बाद मैंने लोगों से जितना हो सकता था, क्योंकि जो मैंने फेस किया था वो मैं बांटना चाहती थी।
आराधना जी, कोई संस्मरण जिसमें कोई डिप्रेस्ड रोगी आपकी काउंसलिंग से सकारात्मक सोच में परिवर्तित हुआ हो?
एक अभी अभी जबलपुर से पेशेंट है, उनको नंबर दिया गया था मेरा, वो इतना डरी हुई बात की मुझसे फोन पे, उन्होंने बात की बहुत डर लग रहा है आपसे बात करने में, आप अगर फ्री हो तो मैं आपसे बात करूं। मैं बोली मैं बिल्कुल फ्री हूं, आप बात करिए। नहीं नहीं आप थोड़ा बाहर आ जाइए, अच्छा आपसे बहुत डर। मैं खुद घबरा गई कि कौन है, क्या बात करनी है इनको। तब वो मेरे से बता रही है कि मैं कैंसर पेशेंट हूं, और फिर मुझसे पहला सवाल उनका यही था कि ट्रीटमेंट तो मेरा 1 साल हो गया खत्म हुए, मैंने पूरा ट्रीटमेंट कराया, सर्जरी भी, कीमो भी, रेडिएशन भी, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं जिंदा रह पाऊंगी। तो मैं बोली आपको ऐसा क्यों लगता है, तो उनका रोना शुरू हो गया और बोली कि नहीं पता नहीं मुझे पूरे समय यही लगता रहता है कि ये सब इलाज ऐसा ही है, और जो बॉडी में आ गया है वो अब कभी नहीं जाएगा, और धीरे धीरे मेरा शरीर खत्म हो रहा है। मैं बोली क्यों आपको वीकनेस लगती है, आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है। तो बोले नहीं रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, सब चीजें ठीक है मेरी। मतलब जब सब चीजें ठीक है तो फिर आप अपने दिमाग के कीड़े को क्यों नहीं भगा रहे हो कि आपको बीमारी है और आप ठीक नहीं हो। तब मैं उनको ये चीज समझाई कि आप ये बताइए आपके हस्बैंड कितने साल के हैं। तो बोले मेरे हस्बैंड 54 के हैं। तो मैं बोली तो आप श्योर हैं कि वो 100 पार करेंगे। तो बोली कि अरे आप कैसी बात करती। मैं बोली नहीं आप बताइए ना कि आप श्योर हैं कि वो 100 पार करेंगे। तो बोली क्या पता एज कैसे बोल सकते हैं किसी का। मैं बोली केदारनाथ में इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या सबकी आयु कम थी क्या, या सबको कोई प्रॉब्लम था क्या? तो आप ऐसा क्या सोच रही हैं कि कैंसर पेशेंट है मतलब आपकी उम्र खत्म है, है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी एज नहीं बता सकता। जब ये बातें उनसे करी हूँ तब वो इतनी रिलैक्स होकर मेरे से बात करी, बोलती हैं अरे आप तो एकदम नॉर्मल लग रहे हैं और आपका तो 2 ही साल हुआ है ट्रीटमेंट खत्म हुए। मैं बोली बस आपकी सोच और मेरी सोच में फर्क है, बाकी कुछ नहीं है, चीज वही आप भी झेले हो वही मैं भी झेली हूँ। तो ये चीजें हैं, कई पेशेंट इतने ज्यादा डरे हुए आते हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप एकदम नॉर्मल जीवन जी सकते हैं।
आराधना जी के किस्से और संस्मरण तो यूं ही हर प्रकार के रोगी को सकारात्मक संबल देते रहेंगे। हमारे साथ उपस्थित तीनों डॉक्टर्स ने भी आपको कैंसर से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां पिछले 3 हफ्तों में लगातार दी। अगले हफ्ते कार्यक्रम में हम फिर आपके साथ होंगे। कुछ सरकारी सुविधाओं की बातें होंगी, कुछ और कैंसर से जुड़ी हुई बची हुई बातें होंगी अंतिम एपिसोड में। तब तक अनीश के साथ संज्ञा को इजाजत दीजिए।
नमस्कार।
सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।